నమోవచ్ఛాయాణం నమో లోయే సవ్వసాహూణం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణి మంగళం కుందకుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారికం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం జైనం జయతు శాసనం. నమః సమైసారాయ స్వానుభూత్యాచకాసితే చిస్సభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరచ్ఛిదే.
స్వాధ్యాయ కీ శృంఖలా మే ఇస్ బార్ అపన్ లోగ్ కృపాళు దేవ్ కే వచనామృత పర్ స్వాధ్యాయ కరేంగే. యే అపన్ సబ్ లోగ్ జానతే హై కి పూజ్య గురుదేవ్ శ్రీ కే శాసన ప్రభావనా యోగ్ మే అప్నే కో ఏసే జ్ఞానీ ధర్మాత్మాఓ కా పరిచయ ప్రాప్త హువా. సచ్ మే శ్రీమత్ జీ కో పహచాననే కీ నజర్ ఓ వాస్తవ మే గురుదేవ్ శ్రీ నే అప్నే కో దీ హై. ఉన్నోనే సంప్రదాయ పరివర్తన కే తురంత బాద్ శ్రీమత్ జీ కే ద్వారా రచిత ఆత్మసిద్ధి గ్రంథ పర్ ధారావాహి ప్రవచన కియే హై ఔర్ జో బహుత్ వర్షో సే సోన్గర్ ట్రస్ట్ కే మాధ్యమ సే ప్రకాశిత హోతే రహే. కృపాళు దేవ్ కా జీవన యది అపన్ దేఖే ఔర్ ఉన్కే జీవన్ కీ విశేషతాఓ పర్ యది అపన్ థోడా విచార్ కరే దృష్టిపాత్ కరే తో అపన్ దేఖతే హై కి బహుత్ ఛోటీ ఉమ్ర మే యద్యపి ఉన్కా దేహ పరివర్తన హో గయా లేకిన్ ఛోటీ ఉమ్ర మే భీ ఉన్నోనే జో జ్ఞాన్ కా ఖజానా అపన్ లోగో కో దియా హై వో ఏక్ అద్భుత హై. గురుదేవ్ శ్రీ నే జిన్కీ ఏకావతారీ పనే రూప్ సే అప్నే కో పహచాన్ కరాయీ హో ఉస్కే బాద్ సోచనే ఔర్ సమజనే కే లియే కుచ్ నీ రహతా క్యూంకి గురుదేవ్ నే సబ్ కుచ్ కహ దియా యే కహ కర్కే. ఏకావతారీ పనా ఇస్కా సీధా అర్థ యే హోతా హై కి పంచమ కాల్ మే జీవ్ కో మోక్ష నహీ హోతా. సీధే సీధే మోక్ష నహీ హోతా. మోక్ష మార్గ కీ శురువాత్ హోతీ హై లేకిన్ సీధే సీధే మోక్ష నహీ హోతా తో ఏక్ భవ్ కర్నా తో జ్ఞానియో కీ మజబూరీ హో జాతీ హై. వర్ణా తో యే సబ్ ఏసే ప్రచండ పురుషార్థీ జీవ్ హై కి యది పంచమ కాల్ మే మోక్ష హోతా హో తో సాయద్ ఇన్కో ఏక్ భవ్ కర్నే కీ భీ జరూరత్ నా పడే. ఏసీ అద్భుత పరిణతి. ఏక్ ఔర్ ఏసా విచార్ ఆయా ఆజ్ సుబహ్ జబ్ మే ట్రేన్ మే బేఠా థా తో ఏసే బేఠే బేఠే విచార్ ఆయా మేనే కా దేఖో జబ్ గురుదేవ్ శ్రీ కీ 10 యా 11 వర్ష కీ ఉమ్ర థీ తబ్ కృపాళు దేవ్ హమ్ లోగో కీ బీచ్ మే సే చలే గయే థే. క్యా బఢియా హోతా కి జితనీ ఉమ్ర గురుదేవ్ శ్రీ కో మిలీ ఉత్నీ ఉమ్ర యది ఇనే మిలీ హోతీ ఔర్ ఇన్ దో మహాన్ సంతో కా మిలన్ హువా హోతా తో ఇస్ భరత్ క్షేత్ర కీ ఔర్ అద్భుత్ క్యా దశా హో సక్తీ థీ కేసీ హో సక్తీ థీ అపన్ సోచ్ నీ సక్తే. ఏక్ గురుదేవ్ కే లియే జబ్ అపన్ యే బోల్తే హై కి గురుదేవ్ మానే భరత్ క్షేత్ర కో విదే క్షేత్ర బనానే వాలే మహాపురుష్ గురుదేవ్ మానే పంచమ కాల్ కో చౌథా కాల్ బనానే వాలే మహాపురుష్ అనంత తీర్థంకరో కా సందేశ్ హమ్ లోగో కో సునానే వాలే ఔర్ ఇస్ పంచమ కాల్ మే భగవాన్ నహీ హోతే ఏసే భగవాన్ కా విరహ భులానే వాలే गुरुदेव अपने को मिले, और यदि उसी के साथ अगर कृपालु देव का भी योग हो जाता तो एक और एक ग्यारह की उक्ति चरितार्थ होती, लेकिन वो तो जो व्यवस्था है, जो विधि का विधान था, उसके अनुसार ये हुआ। देखो बहुत विशेषताएं हैं श्रीमद् जी के संबंध में। एक आता है कि उनसे किसी ने पूछा था कि आपके बाद इस मार्ग का, मार्ग की प्रभावना का क्या होने वाला है, ये मार्ग कैसे चलेगा। तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे देह विलय के 50 वर्ष बाद इस मार्ग का एक प्रचारक निकलेगा। और गुरुदेव श्री ने जब प्रवचन सार के प्रवचन किए तो प्रवचन सार के प्रवचनों में श्रीमद् जी का वो वाक्य उन्होंने उद्धत करके सभा में सुनाया। यानी ऐसे सातिशय ज्ञानधारी कि जिनके क्षोभसम ज्ञान की गुरुदेव श्री इतनी तारीफ करते थे। आत्मज्ञान तो था ही, लेकिन आत्मज्ञान हो और इतना विशिष्ट क्षोभसम ज्ञान हो यह कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनको आत्मज्ञान के साथ साथ क्षोभसम ज्ञान भी इतना कि गुरुदेव श्री ये फरमाते थे कि ऐसा क्षोभसम ज्ञान उस जमाने में किसी का नहीं था। बचपन से शतावधान का प्रयोग कितने कितने लोगों के सामने और कैसे कैसे ऑफर मिले कि आप हमारे साथ लंदन चलो, आप हमारे साथ वहां चलो, आप हमारे साथ वहां चलो। जब उन्होंने देखा कि ये जो शतावधान आदि का प्रयोग है इससे मेरी लौकिक प्रसिद्धि तो बहुत होगी, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग में मैं पिछड़ जाऊंगा, पिछड़ ही नहीं जाऊंगा अभी तो यह भी हो सकता है कि इस मार्ग से मैं च्युत हो जाऊं। तो उन्होंने आजन्म के लिए उस शतावधान के प्रयोग को तिलांजलि दे दी। आज अपन लोग देखते हैं कि लोग मान के लिए तत्व ज्ञान छोड़ देते हैं, मान अपने मान के पोषण के लिए तत्व ज्ञान को तिलांजलि देने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता, लेकिन ये कैसे बाल महात्मा थे, कोई बहुत उम्र नहीं थी उस समय, ये कैसे बाल महात्मा थे कि जिन्होंने तत्व ज्ञान के लिए ऐसी लौकिक प्रसिद्धि को तिलांजलि दे दी। बहुत से प्रसंग हैं। 7 साल की उम्र में एक भाई को देखकर, अमीचंद भाई थे ना, तो उनको उनकी मृत्यु को देखकर 7 साल की उम्र तक जिनको ये पता नहीं कि मृत्यु क्या होती है, और अपने दादा से प्रश्न किया, दादा ने यह सोच करके कि कहीं मृत्यु का नाम सुनकर के ये डर नहीं जाए, है ना, तो उन्होंने उस बात को टाल दिया। लेकिन वो जब बार 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 पूछते रहे तो उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा निकल गई है और अब उनको ले जा करके शमशान में जला देंगे, और उनके जाने के लिए रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी वे बाल महात्मा शमशान घाट के निकट बड़ के पेड़ पर जाकर के खड़े हो गए और ये दृश्य देखने लगे कि ये विधि की कैसी क्रूरता है। उनको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसी क्रूरता है कि ऐसे आदमी को लोग जला रहे हैं। और इसका विचार करते 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 मति ज्ञान का एक विशेष क्षोभसम हुआ, आवरण उनका हटा और जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर अपने पूर्व भव उनको स्पष्ट दिखाई देने लगे। और इस संबंध में उन्होंने एक पत्रांक में यह बात लिखी है कि आत्मा का पुनर्जन्म है, ये बात कहने के लिए मैं अनुभव से तत्पर हूं, मतलब मैं अपने अनुभव से यह बात कह सकता हूं कि आत्मा का पुनर्जन्म है। और एक साधारण नियम है कि जब किसी भी जीव को जाति स्मरण होता है और पूर्व भव में विराधना और आराधनाओं के फल, पुण्य और पाप के फल जिन जिन भवों में भोगे हों वे सब उनको दृष्टिगोचर होते हैं, तो ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में वैराग्य की विशेष विशेष वृद्धिगत होता हुआ देखा जाता है। जैसा कि माताजी के संबंध में भी अपन लोग जानते हैं कि जाति स्मरण होने के बाद गुरुदेव ने भी प्रवचन में लिया कि वैराग्य घणो बढ़ी गयो छे। तो ये एक ऐसे ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, यद्यपि उनके जो जितना उन्होंने लिखा, गुरुदेव श्री को एक उदय था कि उनको सामूहिक रूप में प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त था, पवित्रता थी और पुण्य का भी ऐसा योग कि हजारों लाखों लोग उनके पीछे लगे रहे। श्रीमद् जी के जीवन में पवित्रता और उनको सामूहिक रूप से स्वाध्याय का ऐसा मैंने जैसा गुरुदेव श्री को योग था वैसा नहीं, लेकिन उन्होंने मुमुक्षुओं के पत्रों के उत्तर के रूप में और स्वयं की काव्य प्रतिभा के रूप में, जो उनकी काव्य प्रतिभा बचपन से खिल उठी थी, तो उस काव्य प्रतिभा के द्वारा और मुमुक्षुओं को लिखे गए पत्रों में मुमुक्षुओं की वर्तमान परिस्थिति, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, वे कहां खड़े हैं, कहां भूल करते हैं, किस तरह ये आगे बढ़ सकेंगे, इनको अटकने का कारण क्या है और आगे बढ़ने में इनको क्या उपाय, किस तरह से वृद्धिगत हो सकता है, वो सब बातें उन्होंने विभिन्न कोटि के मुमुक्षुओं को लक्ष्य में रखकर अपने पत्रों में लिखी है। और आज वो पत्र अपने लिए वास्तव में एक ऐसी निधि के रूप में सामने आए हैं कि जो अपने जीवन की अनेक प्रकार की भूलों को निस्तारण करने में समर्थ है, यदि हम उनका गहराई से अध्ययन करें। उनके पत्रों की भाषा थोड़ी गूढ़ और गंभीर है, इससे इसलिए बहुत से लोगों को तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये क्या बात लिखी इन्होंने, ये अन्य मत की बात तो नहीं है ना, ऐसा भी लोगों को भ्रम हो जाता है। गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में कहा कि श्रीमद् जी के पत्रों की भाषा बहुत गंभीर है और उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए। इसी तरह एक और बात कि बहुत भाग्य होता है जब कोई ज्ञानी अपनी अंतरंग दशा को खोल करके लिखे। अपने विद्वानों में केवल एक पंडित बनारसी दास हुए जिन्होंने अर्ध कथानक नाम का एक ग्रंथ लिखा और उस अर्ध कथानक ग्रंथ में उन्होंने अपने 55 वर्ष तक का जीवन परिचय लिखा। और बाद में श्रीमद् जी जिन्होंने अपने विभिन्न पत्रों में, बहुत सारे ऐसे उनके पत्र हैं, हाथ नोंद है, तो उन पत्रों में हाथ नोंद वगैरह में अपनी अंतरंग दशा वर्तमान में कैसी चलती है वो सब बहुत खुल के लिखा है। इससे ज्ञानी का अंतरंग कैसा होता है, ज्ञानी के अंतरंग में किस तरह की धाराएं चलती है, इसका भी बहुत बहुत परिचय अपने को इनके पत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। छोटी उम्र में 16 वर्ष की उम्र में लिखे गए उनके वचन स्वद्रव्य परद्रव्य को भिन्न भिन्न देखो आदि जो 10 वचन है ना, गुरुदेव श्री ने उनके उन वचनों पर प्रवचन किए। 16 वर्ष की उम्र में लिखे गए मोक्षमाला के एक दो पाठ पर भी गुरुदेव श्री के प्रवचन है। वो पाठ है मनुष्य और बंदर वाला, वो अलंकार किया है उसमें कि अगर दो हाथ दो पैर इत्यादि का नाम ही मनुष्य हो तो बंदर तो बड़ा मनुष्य कहलाएगा क्योंकि उसके तो एक पूंछ भी है ना। ये सब बातें, और सबसे प्रसिद्ध जो उनका काव्य है बहु पुण्य केरा पुंज थी सुब देह मानव नो मल्यो, ये एक काव्य जिसमें पूरा पूरा मार्ग अपने को मिल जाता है। ऐसे अनेक अनेक उनके लेखन हैं, लेकिन उनके लेखन अपने को श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ के आधार ग्रंथ में सब उपलब्ध हैं। उन्हीं में से अपन लोगों को एक बहुत गजब का पत्र है उनका, समझने में सरल भी है, प्रेरक भी है
पुरुषार्थ उत्प्रेरक भी है और हम लोगों को संसार परिभ्रमण की थकान लगे और हम अब प्रत्याख्यान करें तो किसका प्रत्याख्यान करें कि अब हम परिभ्रमण का ही क्यों नहीं प्रत्याख्यान कर लें। ऐसा संदेश देने वाला ये पत्रांक 128 नंबर का पत्रांक है और बहुत जोरदार पत्र है, बार बार पढ़ने को मन करे ऐसा पत्र है। और ये पत्र उन्होंने ववाणिया, जो उनका जन्म स्थान है, ववाणिया से ये पत्र लिखा है। प्रथम भाद्र शुक्ल 6 के दिन ये पत्र लिखा है और विक्रम संवत 1946 का ये पत्र है। और इस 46 के पत्र में वो क्या कहते हैं, देखो सबसे पहला संबोधन दिया है बहुत अच्छा, धर्मेच्छुक भाइयों। संबोधन कैसा है, जिनको धर्म की इच्छा है, अर्थात जो अपने जीवन में धर्म प्रकट करना चाहते हैं। इनके पत्रों के आप जो संबोधन पढ़ेंगे वो भी कभी कभी तो बहुत अच्छे अच्छे संबोधन होते हैं। तो यहां पर कहा धर्म इच्छुक भाइयों, प्रथम संवत्सरी से लेकर आज के दिन तक किसी भी प्रकार से आपकी अविनय, अशातना, असमाधि मेरे मन वचन काया के किसी भी योगा योगाध्यवसाय से हुई हो उसके लिए पुनः पुनः क्षमा चाहता हूं। ये तो एक संवत्सरी पूरी हुई है तो वहां से लेकर आज तक अगर किसी भी तरह की किसी भी साधर्मी के प्रति अविनय हुई हो, असाधना हुई हो, असमाधि हुई हो, मन वचन काया से किसी भी प्रकार का कोई योगाध्याय हुई हो, तो सबसे पहले तो उसके लिए क्षमा याचना की है। ये अपन लोग जैसे अपने यहां भी एक पद्धति है ना, 10 लक्षण पर्व समाप्त होते हैं तो अपने एक क्षमावाणी पर्व आता है, तो क्षमावाणी पर्व के अवसर पर अपन सब लोग परस्पर में एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं कि अपने से कोई ऐसी हुई हो, तो इस तरह एक क्षमा याचना की है। और उसके बाद बिना कोई भूमिका बांधे, जैसे अपन तो लिखते ना अत्र कुशलम तत्रास्तु, हम यहां कुशल हैं आप वहां कुशल होंगे, और सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। क्या उल्टी है कि जब हम यहां मिथ्यात्व के भाव मरण में जी रहे हैं तो जहां मिथ्यात्व का भाव मरण चल रहा हो, प्रति समय भगवान आत्मा के चैतन्य स्वरूप की हिंसा हो रही हो, एक एक समय करके भाव मरण में जीव मर रहा हो, तो पहली बात तो यहां कुशलता कैसी, सम्यक दर्शन की उपलब्धि के बिना, आत्मस्वरूप की उपलब्धि के बिना कुशलता का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन लोक में अपन कुशलता किसे मानते हैं कि बाहर की अनुकूलता है ना, शरीर निरोग है और अनेक प्रकार की, तो अपन इसी को कुशलता मानते हैं। और दूसरों के संबंध में भी क्या कल्पना करते हैं अपन कि आप भी कुशल होंगे, तो मतलब आप भी बस उन ये थोड़ी है, उनका भाव मरण हमारा भी नहीं मिटा और उनका भी नहीं मिटा, बस दोनों एक जैसे हैं, और दोनों एक जैसे हैं और फिर भी दोनों एक दूसरे की कुशलता पूछ रहे हैं। तो ये तो उन्होंने कोई बात यहां पे नहीं रखी, लेकिन अब बहुत अच्छा पहले देखो पहला पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ इसका इतना कीमती है कि एक एक पैराग्राफ में बहुत विचार का मैटर बहुत है। सबसे बड़ी बात है विचार करे पहले जीव कि आज तक हुआ क्या है, ये खेल क्या चल रहा है, आज तक हम धर्म के क्षेत्र में भी सब कुछ करते हैं है ना, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, नियम करते हैं, संयम करते हैं, सामायिक करते हैं, सब कुछ करते हैं है? लेकिन परिभ्रमण का अंत नहीं आया, संसार का चक्र चलता रहा, तो आखिर कारण क्या। तो यहां पर बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है इन्होंने, अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता अथवा याद नहीं आता कि जिस काल में जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो। अंतर्ज्ञान से अगर हम विचार करें आत्मा कब से है, आत्मा कब से है? तो आत्मा अनादि से है। अनादि से का मतलब ये कि देखो, एक एक पंच परावर्तन की बात चलती है ना, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि द्रव्य परावर्तन जिसमें सबसे कम काल लगता है, सबसे कम काल, उस द्रव्य परावर्तन में सबसे कम काल लगने पर भी उसका काल अनंत काल है। हालांकि वो अक्षय अनंत नहीं है, सक्षय अनंत है। द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल अनंत गुणा, क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का अनंत गुणा, काल परावर्तन से भव परावर्तन का अनंत गुणा, और भव परावर्तन से भाव परावर्तन का काल अनंत गुणा है। गुरुदेव श्री तो ऐसे बोलते थे कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में, क्या शब्द पे ध्यान दीजिए जरा, क्या कहा? एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत कल्पकाल बीतते हैं और एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर समझे, पहले से छठा काल जो अभी चल रहा है, पहले से चालू हुआ था आदिनाथ से भी पहले, पहले से छठा काल और वापस छठे से पहला आएगा, इसको बोलते 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल। और ऐसे अनंत कल्पकाल पुद्गल परा एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में बीतते हैं। तो अभी आप सोचो कि पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन का काल कितना बड़ा होगा। ये जो शब्द आया ना, इस शब्द पर चर्चा कर रहा हूं मैं, ये कौन से शब्द पर? तो अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता कि जिस काल में परिभ्रमण नहीं किया हो। ये चर्चा चल रही है अपनी, ये ध्यान रखना। तो अभी अब ये परावर्तन और ऐसे ऐसे कितने परावर्तन जीव कर चुका, भाई साहब अनंत अनंत परावर्तन कर चुका। गुरुदेव श्री इसको ऐसे बोलते हैं कि अभी से पीछे जाते जाओ, 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 तो क्या दिखाई देगा कि भव 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 भव। एक समय के लिए भी आत्मा भव रहित नहीं रहा। स्वभाव ऐसा कि जिसमें भव और भव का भाव नहीं, और स्वभाव की विराधना इतनी तीव्र की कि एक समय के लिए भी भव और भव भव के भाव के बिना नहीं रहा। स्वभाव में भव और भव का भाव नहीं, और परिणमन में भव और भव के भाव बिना एक समय नहीं रहा। तो यहां पर उन्होंने कहा बहुत अच्छे वाक्य का, देखो बहुत गजब का, एक जितनी बार पढ़ेंगे मजा आता है। देखो क्या कह रहे हैं, अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए, ज्ञान को थोड़ा सूक्ष्म करो, अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता है, अथवा याद नहीं आता कि जिस काल में, जिस समय में, देखो काल और समय माने काल, और काल में भी काल तो एक मोटे हिस्से को भी काल कह सकते हैं अपन, ये पंचम काल, तो पंचम काल ये एक काल का बहुत बड़ा हिस्सा, और उस काल के अंदर फिर समय, काल एक शब्द का प्रयोग किया काल, और दूसरा शब्द प्रयोग किया समय। समय का मतलब कि भाई बहुत लंबे काल के समय में, बहुत लंबे काल पीरियड में अपन लोगों ने परिभ्रमण किया हो, लेकिन कोई समय ऐसा आया हो कि जब हम भाव के बिना रहे हो, ऐसा नहीं। किसी काल में और काल के किसी भी समय में, अभी अपन मंदिर में बैठे हैं तो भाव से रहित होंगे ना इस समय, तो हा? इस समय तो अपना भाव से रहित का परिणाम चल रहा होगा कि भाई हम मंदिर की क्या बात करें, जब तक अपनी आत्म आराधना नहीं शुरू होगी तब तक साक्षात भगवान के समो शरण में बैठे हों तो भी अपन लोग वहां पर भी आत्म स्वभाव की विराधना करते रहे। ऐसा नहीं कि देखो ये जिस काल और जिस समय में, ऐसा नहीं हुआ कि इनमें गतियां नहीं बदली, गतियां बदली हैं, परिणाम बदले हैं, कर्म के उदय बदले हैं, संयोग बदले हैं, अनुकूलता के ढेर मिले और प्रतिकूलता के ढेर मिले। गुरुदेव बोलते थे ना क्या कि अरबों पति सेठिया या राजा, अरबों की आमदनी जिसको एक एक घंटे में होती हो, ऐसा राजा मनुष्य भव में अनंत बार हुआ है और 100 बार मांगे तब भी एक ग्रास भिक्षा में नहीं मिले ऐसा भिखारी भी अनंत बार हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि संयोग भी बदले, कर्म बदले, परिणाम बदले, गतियां बदली, नहीं बदला तो क्या नहीं बदला कि नहीं बदला तो परिभ्रमण का चक्र नहीं बदला, आत्म स्वभाव की विराधना का परिणाम नहीं बदला। वो यहां पे कह रहे हैं बहुत गजब की कि जिस काल में अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता अथवा याद नहीं आता कि जिस काल में जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो, मतलब कितने कितने वर्षों का तो खुद को जाति स्मरण था, बोलते हैं ना इसे 700 भव या ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं, कितने वर्षों का जाति स्मरण, कि इतना तो जाति स्मरण ज्ञान में खुद के आ गया था, तो जब इतना ज्ञान में आ गया तो बाकी का अनुमान भी होता है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष में परिभ्रमण ख्याल में आ रहा है कि देखो इतने इतने भवों से परिभ्रमण इन गतियों में करते हुए मैं यहां आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे याद नहीं आ रहा तो भी वो मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है कि अगर इसके पहले मैंने आत्मा की आराधना की होती तो ये परिभ्रमण के भव क्यों चालू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भव चालू है वो इस बात को बताते हैं कि मैंने एक समय के लिए भी आत्मा आराधना नहीं की है। तो यहां पे कहा कि इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो ऐसा कोई काल कोई समय कृपालु देव कहते हमें याद नहीं आता। ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं, ये कहकर के ये कहना चाहते कि उनको याद नहीं आता तो हमें तो हम तो भूल चुके ना, मतलब ये कि हमें भी इस बात का पूरा नक्की करना लिखकर लेना चाहिए कि इस आत्मा के अनंत काल अनादि से पिछला अनंत काल बीत चुका, तो वो जो जितना काल बीत चुका एक समय के लिए भी भव और भव के भाव से खाली नहीं रहा, उनको स्मरण में आता है और हमें स्मरण में नहीं आता तो हमें भी अपने को परिभ्रमण का स्मरण लाकर अपने चित्त में संसार शरीर आदि के प्रति संसार जिस भाव से मिले ऐसे भावों के प्रति अंतरंग से वैराग्य लाकर के अपनी आत्मा की आराधना के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। ये खाली इसलिए नहीं कह रहे कि हमको स्मरण में नहीं आता तो क्या किया, कि उनको देखो एक बात और समझो कि वो ये बात कह रहे हैं कि जब इस जीव ने परिभ्रमण नहीं किया हो ऐसा कोई समय हमें ख्याल में नहीं आता, तो जब ये बात उनके ख्याल में आई तो उन्होंने क्या करके दिखाया, परिभ्रमण का अंत करके दिखाया, परिभ्रमण का प्रत्याख्यान करके दिखाया। जैसा मैंने भी कहा कि गुरुदेव श्री बोलते थे एकावतारी पुरुष, और उसका भी अभी कारण आपके सामने रखा कि ये तो पंचम काल में समझ लो सीधा मोक्ष नहीं होता, नहीं तो इन महात्माओं को तो एकावतारी बना भी कहां जरूरत पड़े, इतना फोर्स अंदर से स्वभाव का स्वभाव की जागृति का इतना फोर्स अंदर से होता है ना। तो अब उन्होंने जब उनको परिभ्रमण का स्वरूप ख्याल में आया कि आज तक मेरा परिभ्रमण नहीं मिटा, तो परिभ्रमण के सामने चैलेंज दिया कि ठीक है आज तक मैंने परिभ्रमण किया होगा अब मैं परिभ्रमण नहीं करूंगा और अपनी आत्म स्वभाव की आराधना से परिभ्रमण का अंत लाकर के, मात्र अंत ही लाकर के नहीं एकावतारीपना प्रकट करके यहां से चले गए। ये अपने लिए एक संदेश है कि अगर तुम्हारे अंतर्ज्ञान में आत्मा के परिभ्रमण का चक्र चलता हुआ दिखाई देता हो, इस परिभ्रमण चक्र का विश्वास आता हो, तो तुम भी वो काम करो कि आज तक परिभ्रमण किया सो किया अभी परिभ्रमण नहीं करेंगे, है ना। वो आता है ना वैराग्य का प्रसंग जब होता है, 8-8 वर्ष के बालक जब माता के पास आज्ञा लेने जाते हैं, पुराने जमाने की बात गुरुदेव श्री के प्रवचन में सुनेंगे तो और मजा आएगा उसमें, क्योंकि वो भाषा हम नकल करके भी नहीं बोल सकते जैसा गुरुदेव बोल सकते हैं, वो वैराग्य की भाषा। कि जब वो 8-8 वर्ष के बालक जब बाल माता के पास आज्ञा लेने जाते हैं तो ऐसी तो कोई माता नहीं होती कि 8 वर्ष का बालक मुनि दीक्षा की आज्ञा लेने आया और मां कह के जा बेटा जा, क्या होता है, माता पहले समझाती है, अपने मोह में उसको फंसाने का प्रयत्न करती है, और चूंकि माता भी ज्ञानी है इसलिए वो ये भी जानती है कि रुकेगा नहीं, तो अंत में वो कहती है बेटा जो तुम्हारा मार्ग है वही हमारा मार्ग है। और बेटा भी क्या कोल करार करता है, बेटा भी ये कोल करार करता है कि माता आज तुझे जितना रोना हो रो ले, क्योंकि वैराग्य जब बालक दीक्षा लेने जाएगा तो माता हंसते हंसते विदा नहीं देगी, मोह का इतना तो है ही, चरित्र मोह हो, भले कोई ज्ञानी माता हो तो चरित्र मोह हो तो भी इतना तो राग आ ही जाता है कि उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती है, और जब वो आंसू की धारा बहती है तो वो बेटा कहता है कि मां आज तुझे जितना रोना हो रो ले। मैं भी कौल करार कहता करता हूं कि आज के बाद अब दूसरी कोई माता नहीं बनाऊंगा, ये तू मेरी अंतिम माता है, अब मैं किसी माता को नहीं रुलाऊंगा, है ना। ये जो चित्रण आया ना इस पत्र में बिल्कुल ठीक, लगभग ऐसे ऐसे अनेक चित्रण आपको भगवान कुंदकुंद आचार्य के द्वारा रचित भाव पाहुड़ में पढ़ने को मिलेंगे। संबोधन किया, करे तूने बहुत परिभ्रमण किया, वो यहां पे किया कि परिभ्रमण न किया हो, संकल्प विकल्प की रटन न की हो। रटन माने क्या, एक धुन चलती है ना, सुबह से शाम तक अपन लोगों की क्या धुन चलती है बोलो, कि सुबह से उठते हैं और शाम को सोते हैं, और सोने के बाद सपने में भी अपने क्या चलता है, यही संसार के गोरख धंधे चलते हैं अपने को, ये किया ये करना, ऐसा होना ये व्यापार बढ़ाना, ये करना वो करना, ये सब रटन चलती है। तो वहां पे कहा कि आज तक हमने रटन भी की तो काय की संकल्प विकल्प बस 24 घंटे ऐसा करना ये करना, ये मेरा इसका ऐसा करना उसका ऐसा करना, ये लेना वो देना, ये त्यागना ये ग्रहण करना, ना केवल मात्र संकल्प और विकल्प की रटन। एक समय के लिए भी स्वभाव की आराधना में नहीं आया। तो एक परिभ्रमण का अंत, परिभ्रमण न किया हो एक बात, संकल्प विकल्प की रटन न की हो, और दोनों से क्या हुआ तो और इससे समाधि को न भूला हो। दो बातें, जब परिभ्रमण करता रहा और संकल्प विकल्प की रटन करता रहा तो किसको भूला मैं, कि समाधि। समाधि माने क्या, गड्ढे में बैठ जाना, सांस रोक लेना, कि ये नहीं है समाधि। आदि व्याधि और उपाधि, इन तीनों के अभाव का नाम है समाधि, अथवा दूसरी भाषा में कहें तो अकसाय भाव का नाम समाधि है। ये नास्ति से आत्मा अनुसार परिणति का नाम समाधि है, आत्मा का आश्रय करके होने वाली निर्मल परिणति का नाम समाधि है, है ना। और ज्ञानी को 24 घंटे में से एक समय भी ऐसा व्यतीत नहीं होता जिस काल में समाधि न वर्तती हो, और अज्ञानी को एक समय के लिए भी ऐसा कोई समय नहीं आता, भले वो समाधि मरण का पाठ सुन रहा हो और बाहर में लोग जिसे समाधि मरण और महोत्सव कह रहे हों, तो भी वास्तव में उसका मरण असमाधि में हुआ है। क्यों, क्योंकि आधि व्याधि और उपाधि, आदि माने मन के संकल्प विकल्प, व्याधि शरीर से संबंधित, और उपाधि माने बाहर की, ये सब दूसरी भाषा में कहें अकसाय परिणाम। तो अकसाय परिणाम कैसे प्रकट होते हैं, अकसाय परिणाम अकसाय स्वभाव को समझेंगे तो प्रकट होंगे ना। अकसाय स्वभाव को जब हमने जाना ही नहीं, अकसाय स्वभाव को जब हमने पहचाना ही नहीं, अकसाय स्वभाव की जब हमें अनुभूति हुई ही नहीं, अकसाय स्वभाव की जब हमें प्रति समय विराधना वर्तती है, अरे कसाय परिणामों के साथ हम एकाकार वर्तते हैं, है ना। जिस जिस जाति का परिणाम आता है उस जाति के परिणाम को अपना मानते हैं, जिस जिस जाति के संयोग मिलते हैं उन संयोगों का मालिक अपने को मानते हैं, जिस जिस प्रकार का शरीर मिलता है उस शरीर रूप अपने को अनुभव करते हैं। हमने कभी आत्मा को आत्मा से कब देखा, और समाधि का मतलब क्या है, सीधा आत्मा को आत्मा से देखने का नाम समाधि, अपनी सरल भाषा में कहें तो। अभी तक हम आत्मा को किससे देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं शरीर से, मैं मनुष्य, मैं तिर्यंच, मैं देव, मैं नारकी, आत्मा को देख रहे हैं संकल्प विकल्प के परिणामों से, आत्मा को देख रहे हैं उपाधियों से, आत्मा को देख रहे हैं लौकिक सुख समृद्धियों या असमृद्धियों के माध्यम से। इसके अलावा माने हमने आत्मा को आज तक किसी न किसी के साथ जोड़ करके देखा है, किसी न किसी के साथ आत्मा को जोड़ करके आत्मा को देखना, ये आत्मा के स्वरूप की प्रति समय होने वाली हिंसा है। और आत्मा को आत्मा से देखना कि इसका नाम है आत्मा की समाधि। ये यहां पे कह रहे हैं कि आज तक समाधि को न भूला हो, तो ये तो हो गई भूतकाल की। अब न भूला हो, ये संकल्प विकल्प न किया हो, परिभ्रमण न किया हो, तो हो गया, वो तो हो गया। अभी क्या करना, जो दशा बीत चुकी वो दशा फिर से आने वाली नहीं है, उस दशा का विकल्प करके और अगला समय हम और खराब करें। आज तक मैंने परिभ्रमण किया, आज तक मैंने परिभ्रमण का अंत नहीं किया, ये बात हमने जान ली। अब जानने के बाद हमारा कर्तव्य क्या रहता है, कि परिभ्रमण का अंत, या फिर इसी बार को बार बार रटते रहे कि आज तक मैंने परिभ्रमण नहीं किया का अंत नहीं किया, आज तक मैंने परिभ्रमण किया, आज तक मैंने ये किया, आज तक मैंने आत्मा का कल्याण नहीं किया। अनादिकाल से आज तक आत्मा का कल्याण नहीं किया, और अब आत्मा का कल्याण नहीं किया ये पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हम, तो क्या हुआ, बात तो वही होगी, दो दो पांच नहीं होते, और पहले रट रहे थे दो दो पांच होते हैं, अभी क्या करने लगे दो दो पांच नहीं होते, तो क्या होते हैं वो तो पता नहीं पड़ा ना। तो परिभ्रमण, देखो तीन बातें ली ना, परिभ्रमण नहीं किया हो, संकल्प विकल्प नहीं किया हो, और समाधि को न भूला हो, ये हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं, और भूतकाल में आज तक ये घटनाएं घटित हो रही है। आज अगर हमें ये लगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ, तो कर्तव्य क्या, केवल इन घटनाओं को याद करने का नहीं, लेखो लेखो। तो फिर क्या कहते हैं ये, यहां पे क्या कहते हैं, क्या कर्तव्य है, कि निरंतर यह स्मरण रहा करता है और यह महावैराग्य को देता है। अब ज्ञानी ये नहीं कहते कि ये बातें अगर तेरे जीवन में अगर तेरे को पता लगी हो तो तेरे जीवन में महावैराग्य आना चाहिए, ये नहीं कह रहे। ज्ञानी क्या कह रहे हैं कि हमको तो महावैराग्य देता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से अपने लिए संदेश है। क्या संदेश है, कि तुम्हें परिभ्रमण का इतना लंबा इतना दीर्घ काल, और अगर एक एक गतियों का स्वरूप और गतियों की व्यवस्था अगर उनका अपन सुने ना, एक एक गति के अंदर की क्या क्या अवस्था हुई, अगर उन अवस्थाओं को सुने, और कदाचित ऐसा नहीं होवे, हो नहीं सकता, लेकिन कदाचित ऐसा होवे कि नरक की कोई 5 मिनट की वीडियो बना के ले आवे, ज्यादा नहीं, और 5 मिनट की वीडियो में से 10 सेकंड की वीडियो हमें दिखा दे, और हार्ट अगर कमजोर हो ना तो फेल होगा, यही देख नहीं सकते अपन, जिसको देख नहीं सकते, अरे शास्त्र में उसका वर्णन पढ़ते हैं ना तो कप कपी छूटती है, और ऐसी परिस्थितियों को देखने की बात छोड़ो, भोग करके आए हैं। महावैराग्य आता है का मतलब क्या, कि अब फिर से उस दशा में नहीं जाना पड़े, इसके लिए स्वरूप की सावधानी और संसार परिभ्रमण के कारणों के प्रति उदासीनता। देखो जिसको नास्ति से वैराग्य कहते हैं उसी को अस्ति से ज्ञान कहते हैं। अभी तो निर्जराधिकार चल रहा है ना, यहां निर्जरा अधिकार चल रहा है ना गुरुदेव श्री के प्रवचनों में, तो निर्जरा अधिकार के प्रवचनों में तो ये बात बहुत आई है, ज्ञान और वैराग्य। तो अगर ज्ञानी वैराग्य की ओर से बात करें तो वैराग्य ये नास्ति परक, माने उन भावों से परिभ्रमण के प्रति वैराग्य आना चाहिए, परिभ्रमण के प्रति उदासीनता आनी चाहिए, संकल्प विकल्पों के प्रति उदासीनता आनी चाहिए, असमाधि के प्रति उदासीनता आनी चाहिए, परिभ्रमण के कारणों के प्रति उदासीनता आनी चाहिए, और उस उदासीनता का नाम है वैराग्य। माने ये नास्ति, और कोई भी नास्ति, जैन दर्शन की कोई भी नास्ति बिना अस्ति के नहीं होती। कह जी मैंने क्रोध नहीं किया, तुम्हें क्रोध नहीं किया तो किया क्या, कि किया कुछ नहीं, कि तूने क्रोध ही किया। क्योंकि क्रोध नहीं किया, तो नहीं किया तो उसके स्थान में क्या आया, आया ना, आश्रव गया, तो आश्रव गया तो उसके स्थान में क्या आया, ये नक्की करो, तो उसके स्थान में संवर आया, संवर आया तो आश्रव गया, बात एक ही है। तो जिसको यहां पे कह रहे हैं कि और यह महावैराग्य को देता है, वैराग्य नहीं लिखा शब्द अकेला, वैराग्य भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक होता है शमशानिया वैराग्य है ना, अपने नियम या महावैराग्य नियम सार समय सार में ज्ञान विराग शक्ति, विराग ज्ञान और वैराग्य की शक्ति ज्ञानियों के पास होती है, नियम सार में शब्द का प्रयोग किया सहज वैराग्य, तो ये वैराग्य वो वैराग्य नहीं, कौन सा, शमशानिया वैराग्य, कि 20 साल के 25 साल के लड़के को कोई जला करके आए वो शमशान में है ना, और उस समय शमशान घाट में जब लोगों की चर्चा सुने अपन लोग तो ऐसा लगे कि यहां से जाके सब अभी कुंद कुंद आचार्य के मार्ग में अनुगमी हो जाएंगे उसमें बिल्कुल, और जैसे ही वहां से निकले नाए धोए आधा वैराग्य वहीं, भैया जो गया हो तो गया, अब उसके साथ कोई जाया थोड़ी जाता है, और पहले ऐसा लग रहा था अरे भैया एक दिन यही दशा अपनी आने वाली है, अपना भी ऐसा ही हो जाएगा है ना, ऐसे वैराग्य ये नहीं है बात। महावैराग्य का मतलब ये कि जिसमें स्वरूप की साधना है, स्वरूप का लक्ष्य है, और परिभ्रमण और परिभ्रमण के भावों से, संकल्प विकल्पों से, असमाधि से उदासीन परिणाम है, तो उधर उदासीनता इसका नाम वैराग्य, और उधर उदासीनता तो इधर क्या, कि इधर स्वरूप की ओर ढलान, इसका नाम है महावैराग्य को देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्णन पढ़ करके हमें अपने भूतकाल का इतिहास पढ़ करके अगर अपने चित्त में वैराग्य नहीं आता, अगर अपने को परिभ्रमण के कारणों से हटने का और स्वभाव की ओर ढलने का पुरुषार्थ नहीं होता, तो धारणा ज्ञान तक तो ये विषय आ गया लेकिन अंतरपर्ण मन का विषय नहीं बना। और एक बात ध्यान देना कि धारणा ज्ञान में जिनवाणी आ जाना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परिभ्रमण, जिस परिभ्रमण की चर्चा करी ना, तो उस परिभ्रमण के चक्र में हम अनंत बार नौवें ग्रेवक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनि बने हैं, अनंत बार ग्यारह अंग नौ पूर्व के पाठी बने हैं, तो ये धारणा ज्ञान में जिनवाणी का आ जाना ये सच में कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है, इससे अनंत, इससे कई कई गुना जिनवाणी का क्षोभसम धारणा ज्ञान में अनंत बार प्रवेश हुआ है, लेकिन क्या नहीं हुआ कि अंतर परिणति अंतर स्वभाव के सन्मुख नहीं झुकी, परिभ्रमण के कारणों से वैराग्य नहीं आया, परिभ्रमण के कारणों से चित्त नहीं हटा, तो परिभ्रमण के अभाव की बातें तो बहुत सरस सरस करता रहा लेकिन अंदर में परिभ्रमण का चक्र चालू रहा, तो भी अरे भव चक्र का फेरा नहीं एक ही टला, आता कि नहीं आता, देखो ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो बहुत बढ़िया एक पैराग्राफ है, इसके बाद अगला पैराग्राफ बहुत अच्छा, एक बहुत जबरदस्त चर्चा इनके पत्रांकों में आती है जिसमें ये आता है स्वच्छंदता ये मार्ग प्राप्ति का सबसे अवरोधक कारण है। स्वच्छंदता मतलब क्या, कि ज्ञानी के अथवा ज्ञानी के मार्ग की उपेक्षा करके अपनी मति कल्पना से मार्ग को प्राप्त करने की जो जिद्द होती है जीव की है ना, ये एक स्वच्छंदता का बहुत बड़ा प्रकार है। जैसे किसी भी रोग की चिकित्सा अथवा औषधि सेवन सुयोग्य चिकित्सक अथवा डॉक्टर के कुशल मार्ग निर्देशन में ही संभव है। यद्यपि वो औषधि सेवन रोगी ही करेगा, डॉक्टर को नहीं करनी है, लेकिन रोगी करने के बाद भी किसके किसका कुशल निर्देशन चाहिए उसमें, अपनी मति कल्पना से अगर वो औषधि सेवन करने लगे तो प्राणांत को प्राप्त होगा। इसी तरह ये अनादि काल का अनजाना मार्ग है, समझ आ गया ना, अनादि काल से अपन ने इस मार्ग को जाना नहीं, और मार्ग के जानने वाले ज्ञानी धर्मात्मा कदाचित अपने को मिले। अनंत बार अपन समो शरण में गए तो साक्षात तीर्थंकरों का भी योग हुआ, साक्षात वीतरागी संतों का भी योग हुआ, धर्मात्माओं का भी योग हुआ, लेकिन उनके योग में भी उनके सामने अपने अभिप्राय को मुख्य रखा। वो कठोर बात कह रहा हूं, ये सुनना, कि उनके सामने अपने अभिप्राय को मुख्य रखा और उनसे भी ये अपेक्षा की कि मेरा जैसा अभिप्राय है वैसा ये बताएं, अथवा उनके वचनों को अपने अभिप्राय के अनुसार पोषित किया। देखो मैं भी तो यही कहता था, गुरुदेव कह रहे कि नहीं कह रहे, मैं ये कहता था गुरुदेव कह रहे कि नहीं कह रहे कि तू मार्ग का अपात्र है। गुरुदेव ये कह रहे हैं, गुरुदेव के सुर में अपना सुर मिलाना, अपने सुर को गुरुदेव के सुर के साथ मिलाने की कोशिश मत करना। मैं कहता हूं वैसा गुरुदेव कहते हैं, भटका हुआ जीव है, और जैसा गुरुदेव कहते हैं मुझे भी ऐसा समझ में आया, ये मेरा अहोभाग्य है, ये मार्ग की पात्रता का जीव, पात्रता वाला जीव है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सोचना जरा, ये स्वच्छंदता का जो दोष है ना, सबसे बड़ा अवरोधक कारण यह है। क्यों आज हम इतना स्पष्ट तत्व ज्ञान होने पर भी कहां हमारी अटक है? कहीं ना कहीं अटक तो है ना, बिना अटक के तो हम भटके नहीं है, है ना। तो देखो ये स्वच्छंद नाम का दोष, और स्मरण होता है, क्या स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद करते हुए जीव को उदासीनता क्यों न आई। परिभ्रमण क्यों? कि केवल स्वच्छंद करते हुए अपनी मति कल्पना से मार्ग प्राप्ति का प्रयत्न किया, कहते अब तो इससे तेरे को उदासीनता आनी चाहिए, अर्थात अब तो ज्ञानी धर्मात्मा के कुशल निर्देशन के अनुसार, उनके निर्देशन के अनुसार चलने में हमारा भला है, समझ आ गया। और अपनी मति कल्पना से चलकर हम इस ज्ञानी के मार्ग में पहुंच जाएंगे या इसको प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई निमित्ताधीन दृष्टि की बात नहीं है, लेकिन यह हमारी ज्ञान की जागृति की बात है। लोग ऐसा ऐसी बात करते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है इसका मतलब तो ये हो गया साहब निमित्ताधीन दृष्टि हो गई, ये तो पर निमित्ताधीन दृष्टि नहीं हुई, तुम्हारा हमारा जागृत ज्ञान ये निर्णय करता है। ज्ञानी के मार्ग में चलने के लिए ज्ञानी का मार्ग, उस मार्ग जो ज्ञानी ने बताया, उस मार्ग का निर्णय कौन करेगा? ज्ञानी ने तो निर्णय किया हुआ है, और ज्ञानी ने निर्णय करके वो मार्ग बताया, निर्णय करके वो मार्ग बताया, और हम ज्ञानी के कुशल निर्देशन में उस मार्ग की आराधना करते हैं, तो मार्ग की आराधना करने के लिए मार्ग का निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ज्ञानी के अभिप्राय के साथ अपना अभिप्राय मिलान खाए, अपने अभिप्राय के साथ ज्ञानी के अभिप्राय को कभी नहीं मिलाना, ज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार अपने अभिप्राय को बनाने की कोशिश करना, उसके पहले अपने को ये सब निर्णय आएगा कि नहीं आएगा, देव शास्त्र गुरु ज्ञानी धर्मात्मा इन सबका निर्णय अपने को आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो उसमें निमित्ताधीन दृष्टि कहां रही? इसमें तो वास्तव में ज्ञान की जागृति की बात है, ज्ञान इतना जागृत हुआ है कि वो ये निर्णय ले सकता है कि ये मार्ग मेरे हित का है, ये ज्ञानी मेरे हितकर है, ये अनंत जन्म मरण को टालने के लिए आए हैं। क्यों आए? गुरुदेव श्री विदेह क्षेत्र की कभी उल्टी गंगा बहती देखी आपने? देखी कभी? ये उल्टी गंगा नहीं बह गया कि विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र में गुरुदेव का आना, ये क्या है? ये एक बात तो समझ लेना का, अगर आराधना करके कोई जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेता, ये समझ लेना, पंचम काल में आके आराधना करता है। कुंद आचार्य आदि सभी दिगंबर संत जो पंचम काल में हुए, वे पिछले भव का सम्य दर्शन लेके नहीं आए थे यहां। ये नियम है जिनवाणी का कि पंचम काल में कोई सम्य दृष्टि जीव आकर के जन्मता नहीं है, पर यहां आकर के सम्य दर्शन प्राप्त किया। गुरुदेव तो हमारे लिए इतना पक्का उदाहरण है ना कि उनको कौन गुरु मिला था बताओ, कौन गुरु मिला? श्रीमद जी को कौन गुरु मिला बताओ मेरे को? जितने ज्ञानी हुए टोडरमल जी वगैरह सब ले लो ना, बनारसी दास जी वगैरह सब ले लो, कौन गुरु मिला इनको? लेकिन पूर्व भव की आराधित आराधना और यहां समय सार पाकर के, है ना, और वो आराधना को उन्होंने सफल कर लिया। और आज अपन लोगों के लिए आराधना का ऐसा खुला मार्ग कि सोगानी जी बोलते हैं कि गुरुदेव ने सब माल तैयार करके रखा है, अपन तो अपन को तो क्या करना है कि अपने को तो सिर्फ खाना है, हलवा बना करके तैयार रखा। मैं तो इससे आगे एक बार और बोलूं कि हलवा बना दिया, चम्मच में रख दिया और अपने मुंह में भी चम्मच उन्होंने रख दी। अब इसके बाद ये कहे कि निगलो भी आप ही, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, निगलना तो खुद को पड़ेगा, है ना। ये क्या है, देखो समय सार आदि जिनवाणी, उन जिनवाणी का मर्म, हाँ, और मर्म के साथ आज उनके प्रवचन, और आज आज आप और हम लोग वर्ल्ड टू वर्ल्ड एक एक शब्द गुरुदेव बोलते और एक एक शब्द अपन लोग पढ़ते हैं, कहां है ये जमाना। अगर हम काल की बात करें तो इससे अद्भुत बाहरी रूप से, इससे अद्भुत निमित्तों का सद्भाव और क्या हो सकता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि देखो, और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए, एकमात्र कारण कि स्वच्छंदता से जीव ने परिभ्रमण किया, और स्वच्छंदता इतना बड़ा दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि इसमें साक्षात ज्ञानी की विराधना का महापाप है। क्यों? स्वच्छंद माने ज्ञानी के मार्ग से प्रतिकूल वर्तने का नाम स्वच्छंद है। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है कि ज्ञानी के मार्ग से प्रतिकूल वर्तने का नाम। तो एक देखो, अच्छा अब इसमें समझो कि कितना बड़ा पाप है ये कि ज्ञानी का मार्ग, तो एक ज्ञानी का मार्ग है या अनंत ज्ञानियों का मार्ग है वो, है? अपन गुरुदेव श्री का नाम लेते हैं तो गुरुदेव श्री अकेले हैं या गुरुदेव श्री के साथ अनंत ज्ञानी धर्मात्मा सिद्धालय तक, क्योंकि चौथे गुणस्थान से लगाकर सिद्ध तक के ज्ञानियों का एक ही प्रकार है और उनके अभिप्राय भी एक ही प्रकार के हैं। तो हमने किसी एक ज्ञानी की उपेक्षा नहीं की, उनके अभिप्राय से विरुद्ध अगर हम चले तो उसमें सिर्फ एक ज्ञानी की उपेक्षा नहीं हुई, वो एक ज्ञानी का मार्ग नहीं है बल्कि अनंत ज्ञानी उनके अनुमोदन में खड़े हैं। गुरुदेव ने बात कही, श्रीमद जी ने बात कही, तो गुरुदेव और श्रीमद जी की बात नहीं है अकेली, अरे सिमंदर परमात्मा गुरुदेव के अनुमोदन में खड़े हैं। क्या मतलब अनुमोदन में खड़े का मतलब क्या, कि वो बात जो गुरुदेव ने कही वही बात सिमंदर भगवान कह रहे हैं, और जो सिमंदर भगवान कह रहे हैं वही बात ये कह रहे हैं, और ये सिमंदर भगवान नहीं, ऐसे ऐसे विदेश क्षेत्र में भी अनंत तीर्थंकर हो गए, सिद्धालय में अभी विराजमान है, भरत क्षेत्र में अनंत ज्ञानियों का। तो एक ज्ञानी की उपेक्षा, ज्ञानी के मार्ग की उपेक्षा, उसमें अनंत ज्ञानियों के मार्ग की उपेक्षा का, अनंत ज्ञानियों की उपेक्षा का महामिथ्यात्व रूप भयंकर पाप विद्यमान है, उसका हमको ख्याल नहीं आता। आ गया ये, इसलिए उन्होंने कहा कि केवल स्वच्छंद से करते हुए, ये शब्द आया ना केवल, तो अपने को लगता है केवल माने छोटी सी बात होगी, अरे केवल इतनी सी तो, केवल ये केवल छोटी सी बात के लिए नहीं है, केवल माने बहुत बड़ी बात है, माने इसके अलावा, यहां केवल क्यों लगाया कि इसके अलावा परिभ्रमण का कोई कारण नहीं है, है ना, कि तुमने पूजा नहीं की इसलिए तुम्हारा परिभ्रमण हुआ, तुमने व्रत उपास नहीं किया इसलिए तुम्हारा परिभ्रमण हुआ, तुमने दान नहीं दिया इसलिए तुम्हारा परिभ्रमण हुआ, तुम्हें क्षोभ संज्ञान नहीं हुआ इसलिए तुम्हारा परिभ्रमण हुआ, है ना, तुम मुनि नहीं बने इसलिए तुम्हारा परिभ्रमण हुआ, नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। तुमने ज्ञानी के मार्ग की उपासना नहीं की, ज्ञानी के मार्ग को ज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार स्वीकार नहीं किया, ज्ञानी के अभिप्राय से विरुद्ध चले, अपने अभिप्राय को मुख्य रखा, कहते एकमात्र परिभ्रमण का कारण यह है, दूसरा कोई परिभ्रमण का कारण नहीं है। बात समझ में आती है कि नहीं, है ना, क्यों? क्योंकि भैया बहुत गंभीर मार्ग है और बहुत गंभीर मार्ग को बहुत गंभीरता से लेना है ना। वो यहां पे कह रहे, दो मिनट में करते, स्मरण रहा करता है केवल, ये आ गया ना, परिभ्रमण करते हुए जीव को उदासीनता क्यों न आई, क्यों नहीं आई, अभी तक उदासीनता क्यों नहीं आई, करे अब हुआ, अनंत काल से जो हुआ सो हुआ, अब नहीं, अब नहीं, ऐसा भाव क्यों नहीं आता, है ना? और अभी भी उन्हीं परिभ्रमण और परिभ्रमण के कारणों में ही हम क्यों लगे हुए हैं, ये कहना है। उदासीनता क्यों नहीं आई, ये हमारे सामने प्रश्न मार्क डाला है उन्होंने। देखो, ज्ञानी का आत्म संबोधन, भले ही वो अपने लिए संबोधन करते हो, आत्म संबोधन की भाषा हो, लेकिन जगत के जितने पात्र जीव हैं उन सबके लिए उनका संबोधन है। छटाल में आता नहीं आता, दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। तो ये दौलत राम जी अपने को संबोधन कर रहे हैं, आत्म संबोधन करके जितने जगत के जीव हैं उन सबको उनका संबोधन है। इसी तरह यहां पर ये कह रहे हैं, उदासीनता क्यों नहीं आई, दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, है ना, देखो मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए, या करते हुए या हां अन्यथा करते हुए यह बुरा है, ऐसा यथा योग्य क्यों न जाना। इसकी चर्चा अपन कल के उसमें करेंगे। अर्थात ऐसा जानना चाहिए था फिर भी न जाना, यह भी पुनः परिभ्रमण करने से विरक्त बनाता है। आज तक अन्य जीवों के प्रति क्रोध, मान, माया, लोभ, यही तो किया क्या अपन ने आज तक, क्या किया? आत्म स्वभाव की आराधना तो नहीं की, अपने प्रति भी अनंत क्रोध किया, अपने प्रति अनंत मान, अपने लिए अपना अनंत मायाचारी, अपने लिए अनंत लोभ, अपने लिए अपना बुरा करने में अपन ने कोई कसर नहीं रखी, है ना, और दूसरे जीवों के प्रति भी यही व्यवहार अपना रहा। आचार्य यहां पर वो कहते हैं कि ये बुरा है, ऐसा करते हुए करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन ये बुरा है, ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, ऐसा भाव भी आया क्या? सोचो जरा, मैंने कितना जबरदस्त वैराग्य का संबोधन है कि भाई तू अपनी आत्मा पर दया कर, अनंत काल तेरे को अपनी आत्मा की हिंसा करते करते बीत गया। दूसरे का तो कुछ कर नहीं सकता, उनके प्रति परिणाम कर सकता है, उनका कुछ नहीं कर सकता, और उनके प्रति किए गए परिणाम में ये बुरा है, ये इसमें तो ये मेरा बुरा है ना। दूसरे के प्रति अपन क्रोध करे, मान करे, माया करे, लोभ करे, एक्स वाई जेड कोई भी परिणाम करे, दूसरे का क्या बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अपना क्या नहीं बिगड़ने वाला है? अपना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अपना तो समझ लो कि परिभ्रमण का चक्र चालू ही रहने वाला है। तो इसलिए ये सब अगर हम विचार करें तो भी परिभ्रमण करने से विरक्त बनाता है ये विचार कि भाई बहुत हुआ, अभी थोड़ा मर्यादा में आ जाओ, है ना, चैतन्य स्वभाव की मर्यादा में आ जाओ, और ये सब जो परिभ्रमण के कारण आज तक किए हैं कहते इनसे विरक्त हो जाओ, स्वभाव की आराधना में आ जाओ। ऐसा अद्भुत प्रेरणादायी ये पत्र है ना, इसकी और आगे अपनी चर्चा चलेगी।